गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
पहले तो समाज सुधारक का काम देखो, स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि मैं माता पिता की सेवा के हक में नहीं हूं। और ये औरों को डंडोरा पीटते फिरते हैं, माता पिता ही गुरु होते हैं, उनकी सेवा करना ही प्रथम कर्तव्य होता है। क्या दरिया है, गुरुआ दौरा। और दयानंद जी भी आगे यही डंडोरा पीटते फिरते हैं। उन 10 नियमों में यह भी बना रखा है कि माता पिता ही की सेवा प्रथम है, ऐसे है वैसे। अरे और खुद ये कहते हैं कि मेरे पास ये क्या बताना चाहते हैं कि वो पत्र जो भेजा वो आलकाट कर्नल के पास, इसने लिखा कि मैं अपने माता पिता का नाम तो आपको सही नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि हो सकता है मेरे माता पिता जीवित हो और वो मेरे पास आ जाओ तो मैंने उनकी सेवा करनी पड़े, उनके साथ घूमना फिरना पड़े, उनके ऊपर मैंने धन लाना पड़े, इससे मेरा वो सुधार कार्य में बेघन हो। सुधार कार्य का कलम जिन्हें तोड़े रखी है सत्यार प्रकाश में आपने देखी होगी, सुधार की जगह बिगाड़ कर सकता है। अब क्या है, इसे सिद्ध हुआ के स्वामी दयानंद जी माता पिता की सेवा करने के विरोधी थे। अब देखो, आप कोई तो मजदूरी कर रहा है, कोई व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, तो ये भी तो आपका काम है। यदि हम ये कहें जिसके अनुसार हम माने कि मैं खेती करता हूं, माता पिता की सेवा करूं, तो मैंने खेती के काम में बाधा बने मेरे, उसका काम सुधार का था। जब उसके पास माता पिता आ भी जाते के बिजली पड़ जाती, क्या हो जाता। जब यहां देखो महीने में, पूरे महीने में हम हिसाब लाएं तो कम से कम 50,000 आदमी एक महीने में यहां आते हैं, रुकते हैं, खाना खाते हैं और उनकी सेवा की जाती है। और उसमें दो माता पिता भी आ गए तो के बिजली पड़गी, उसमें कौन सी बाधा पड़गी इस दास को, मेरे माता पिता यहीं रह रहे हैं, उनकी न्यारी के सेवा करनी पड़गी हमने। तो ये कहने का भाव जो कति अज्ञानी था, ना इसने समाज सुधार का बीरा था, ना इसने कुछ व्यवहार का ज्ञान था, भांग पी कर जो भी शास्त्र, क्योंकि संस्कृत का ज्ञाता था, क्योंकि बचपन से ब्राह्मण था, इसके घर में पहले से अभ्यास कराया जाता था संस्कृत बोलने का, पढ़ने का, वेदों के को घोटने का, यजुर्वेद को भी इसने पढ़ लिया था 14 साल की उम्र तक, श्याम वेद तो बचपन से ही पढ़ाए जाते थे, और भी स्तोत्र गोट रखे थे, बड़ बोला था, न्यू कह रहे गणे बोलनी है गाता बूमड़ा बिक जाकर। तो यो ज्ञान बेच गया और दुनिया को कत्ती बांध गया, क्योंकि उस समय अशिक्षित लोग थे, चंद लोग होते थे जो थोड़ा बहुत अपना अक्षर ज्ञान रखते थे, लेकिन संस्कृत उनके पास भी नहीं होती थी, क्योंकि संस्कृत पढ़ना केवल ब्राह्मण का ही काम था, को अधिकार था। तो न्यो बनी बात, अब देखो भांग पीता था इसी में, इसकी यही वही बुक है समग्र क्रांति के अग्रदूत, इसके प्रश्न नंबर अब 19 पर ले चलते हैं आपको। ये तृतीय लेख है, ये प्रश्न नंबर 16 पे, अब आगे देखो ये प्रश्न नंबर 19 पे, ये 21 पे, ये 21 है, ये क्या लिखा है यहां देखिएगा। ये कहते हैं श्रृंगी और श्रृंगी रामपुर से होकर छावनी की पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर जाने वाला था, जब संवत 1912 विक्रम समाप्त हुआ। 1913 विक्रमी संवत अगले 5 वर्ष में कानपुर गया प्रयाग और मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थानों स्थान मैंने देखे। भाद्रपद के आरंभ में मिर्जापुर पहुंचा। यहां देखो ये फिर लिखा है ये 21 पे, तत्पश्चात फिर वस्तु जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। और अशुद्ध सुदी दो, ये 1914 है ना कि 1913 है ना कि 1313, क्योंकि यहां ये कंटिन्यूस खुद कह रहा है कि 1912 यहां समाप्त हुआ, विक्रमी 1913 में अगले 5 वर्ष में कानपुर आदि में मैं गया, तो यहां 19 गलत मिसप्रिंट है। ये 1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। यहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन अर्थात अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। ओहो, जय हो बंदी छोड़ की, समाज सुधारक की जय हो। फिर पढ़ो, दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया, सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेशुद्ध हो जाया करता। अब पुण्यात्माओं, इसने कित कित रोआ, एक एक किसान जो है टोटे में वर्षा हुई को ना अकाल पड़ गया, उसने चक्की रान का काम शुरू कर दिया। पहले हाथ से पीसने वाली आटा चक्की होती थी और उसको एक लोहे के औजारा थे उसमें टाके ही मारा करते, वो पाट घिस जाते थे, वो फिर पीसा ना करते आटे को। अब उसने और तो कोई काम पाया ना, दो थोड़ी सी ले ली, चक्की ठीक करा लो, चक्की ठीक करा लो। एक बुढ़िया बोली, भाई आजा हमारी चक्की ठीक कर दे। वो चक्की खोल लिए पाठ ने, बोली भाई मैं जल भर लेती हूँ कुएं पर, पानी ले आऊं तो इतना अपनी चाकी डाले। अच्छा ताईजा, मैं तेरा के नाम है? बोला रमलू नाम है मेरा, रमलू। बोला अच्छा भाई। अब उसने क्या किया, उसने सोची जल्दी जल्दी, अभी शुरुआत तो हुई है, पहले एक बुढ़िया मिल गई तो इस गांव में तो काफी पाओगे। उसने सोची तो जल्दी जल्दी कर दे, इसने फटाफट तैयार, वो जोर जोर से मारा थोड़ा के मैं अनजान था, वो कदे राई थी ना, शुरू वाला दिन का काम था, तो उसने उसका वो पाठ फूट गया, वो चक्की का पाठ फूट गया, पाठ फूट गया। उसने सोचा बुढ़िया दौनी दे नहीं, तेने पैसा दे नहीं, और तेरे 10 और सुनावेगी, तू भाग ले। अब वो शर्ट देसी ऊपर न उठा, शीघ्रता से ऊपर उठा तो ऊपर घी रखा था, छिक ऐसे लटका देते थे ऊपर बांध के बिल्ली के डरते, उसमें घी रखा था अच्छा 5 किलो पक्का, एक मटके में कच्चे और मिट्टी के, वो सिरका लग गया, वो सिर लगते हैं और वो मटका तले फूटा पड़ गया, वो घी खिंड गया, घी गिर गया नीचे। तो उसने सोचा ही तेरी पिटाई चौके सोगी रड़ बांध देंगे थाम गए। उसने स्पीड से भागना चाहे, आगे से बुढ़िया लेके आ गई पानी, उसका टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। तो वह माई का जो बटका फूटा ने बोली रे रमलू तन रो लू, ने बोला ताई आगे देखे जाइए रोए जाइए। तो पुण्यात्मा समाज सुधारक ने देखे जाइए रोए जाइए, समाज सुधारक को जहां से भी छेड़े उड़े बेगन पाथ रखे इसने सारे उल्टे खोटे कर्म। फिर अपने उसी मूल काम पर आते हैं। खाखी और निर्बाणी नागा सिद्ध जमा चलावे हैं, रणसिंगे तुर ही तुतकारा, ये गागड़ भांग घुटावे। गागड़ माना अच्छी घोट के लिया, अच्छा अच्छा डालना, इसमें पानी थोड़ा नशा गणा हो जा। अब कहने का भाव यह है कि ये भी गेना नो मुंडी बनगी, काल तो इनको खूब नचाता है, इनको कति डिस्चार्ज करना चाहता है कि ये प्राणी गलत साधना करे, बकवादम बढ़ा रहा है और भक्ति से कति हीन होकर के पशु योनि में चला जा, फिर इसका मुझे डर नहीं कि यू पार हो जाएगा, तेरे बाहर निकल जाएगा। काशी गया प्रयाग महोदित फिर जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर पुष्कर परसे है फिर द्वारका दाग दगावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाने हम सतगुरु बैठे न्यू जाने, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बंधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जाते एक चलावे हैं, काटे शीश नहीं दल करुणा वो जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। परमात्मा की एक वाणी भी गलत नहीं पुण्यात्माओं। अब देखो गीता जी के अध्याय नंबर 7 में 12 से और 15 तक 3 श्लोकों में 4 श्लोकों में कितना कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने, बिल्कुल यथार्थ ज्ञान दे रखा। कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और ये वही है ये षटदर्शनी, ये षटदर्शनी ही है, ये जो गिरी पुरी नागा वैष्णो और स्वामी दानंद जी भी इसी वैष्णो परंपरा के अंदर एक दंडी स्वामी थे ब्रजानंद, उनके शिष्य थे। लास्ट में उन्होंने उसी गुरु को फाइनल समझा। वैसे तो 12-13 गुरुओं के पास धक्के खाए, वहां सारे अज्ञानी भरे थे, उस अज्ञान से जिसको जिससे भी जो मिला उसको लेकर आगे चलता रहा। तो वो भी दंडी स्वामी था, वैष्णो विष्णु उपासक था, उनके ये शिष्य थे। फिर उसके बाद इसने अपनी उलट पुलट सोच की तो उलट की तरह सत्य की तरह असत्य व ठोक ठाक कर कुछ अलग ही बना बैठा। तो यहां देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और यह है अध्याय नंबर 7। इसमें देखना यहां 12 से प्रारंभ करते हैं, ये 12 गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाला वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये क्या कहता है गीता ज्ञान दाता कि जो रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सची थी, तमगुण शिव से जो संहार, ये तीनों जो काम हो रहे हैं ये उनका नियमित मात्र, उनका मुख्य कारण मैं हूं, क्योंकि इस काल को 1,00,000 मानव श्रीधारी प्राणी खाने पड़ते हैं। इसको श्राप लगा हुआ, इसको रोग लगा है, इसको श्राप कहो चाहे रोग कहो, इसने ऐसी गलती की उसका दंड कहो, तो उसके कारण इसने अपने पुत्रों को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दिया, नहीं तो ये इसे जुल्म में सहयोग नहीं दे इसका बिल्कुल भी, गुप्त रहता है, गुप्त रूप से इनको उल्ट पुलट करके घबरा डरा के धमका के उल्टी साधना सिद्धियां करा के स्पिनी के अंदर जो है फीड कर देता है, और ये तीनों क्रियाएं ये करवाता है, ये तीन कर्म से ये जीवों की उत्पत्ति स्थिति और सार कराता है, और कहता है इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, लेकिन इनमें मैं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि वो दूर रहता है। आगे क्या बताता है गीता जी अध्याय नंबर 7 के, अध्याय नंबर 7 इस 13 हम अब 13 को पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है और इन तीनों गुणों से परे मुझ माम माने मुझ अवयम माने अविनाशी को नहीं जानते। इसका अर्थ ये है, वैसे तो ये है कि मोहित न जानती माम एवं परम अवयम, मुझे और उस परम अवयम को नहीं जानती। ये कहता है कि ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा में ही लीन रहते, मुझे और उस परमात्मा को ये नहीं जानते जो केवल तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी तक ही सीमित है, ये उन ऊपर उस परमात्मा को नहीं जानते तीनों गुणों से परे। आगे देखो 14 में, ये 7 का 14 ये 14 इसमें क्या लिखा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अतीत भूत त्रिगुणमयी मेरी माया। ये त्रिगुणमयी मेरी माँ रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी द्वारा फैलाया गया ये माया जाल, ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर यानी खतरनाक है, बड़ी दुस्तर है, बुरी है। और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो माया को से तर जाते हैं यानी ब्रह्मा विष्णु के, जैसे ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्म लोक में चला जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले इनके लोक में जाता है और फिर वापस तुरंत नीचे गिर जाता है। इनका बहुत ही कम समय होता है स्वर्ग का। आगे देखो 14 में कमाल किया है, 14 में बता दिया कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अत्यद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा फैला गया जाल बड़ी दुस्तर खतरनाक है, बड़ी बुरी है, दुष्ट माने बुरी। और जो पुरुष मुझको ही बजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं यानी मेरे से इनसे ऊपर उठ जाते हैं। फिर क्या बताया है कि माया के द्वारा इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के ही के ऊपर आधारित इन्हीं से मिलने वाले कर्म इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो आरूढ़ हो चुके हैं इनसे आगे किसी भगवान को नहीं मानते, उनके विषय में लिखा रिनी की जो साधना करते हैं उनके विषय में माया के द्वारा, ये 15वां श्लोक है 7वें अध्याय का गीता जी, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे असुर स्वभाव राक्षस, ओहो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे ये दूषित कर्म करने वाले भांग पीवे बकवाद करें मूड लोग मुझको नहीं भजते, मेरी साधना नहीं करते। अब भजते शब्द लिखा इसका मतलब ये गुण कोई है ये भी भजन योग्य है, ये भी कोई शक्ति है, ये भी आपको क्लियर करके दिखाएंगे तभी ये बात जचेगी। रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इसको भी प्रमाणित करके ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अब देखिएगा ये श्री देवी मद भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक, ये कहां से छपी है अथ, ये देखो अथ अथ देवी भागवतम, अथ देवी भागवतम भाषा टीक सभाष टीकम सहभात्यम, ये है खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसमें आपको तीसरे सकंद में दिखाते हैं, तीसरा सकंद ये देखिए अथ श्रीमद, अथ श्रीमद देवी भागवते, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब इसके तृतीय सकंद में आपको दिखाते हैं 18 पृष्ठ पे, नहीं ये है 11 पृष्ठ पे, क्षमा करना ये है देवी भागवत पृष्ठ 11 और अध्याय 3 अध्याय 5। इसमें यहां शंकर भगवान बोल रहे हैं, कहते हैं हे माता हे मातर यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको यानी मुझको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण सतोगुण युक्त किया है। अब इसकी संस्कृत देखें, ये सातवां, ये यहां देखा आपने हिंदी, सातवां मंत्र, ये सातवां श्लोक समाप्त हुआ, आठवां प्रारंभ हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किया, युक्त क्यों किया है, क्यों किया है। अब यहां इसकी संस्कृत देखें, यह सातवां समाप्त हुआ, आठवां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित तमोगुण, मुझे तुझने तमोगुण क्यों बनाया, और कमल जय कमल से उत्पन्न वाले होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण बनाया, और सुहित किमु सुहित किमु सतोगुण हरि, हरि को किस प्रकार तने सतोगुण बना दिया। इब देखो क्या कहते हैं, अब शंकर भगवान कहता है कि आप कहते हो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तुम मेरे बड़े लाडले बेटे हो, तो अगर तुम हमारे पर इतनी दयायुक्त है तो इसे दुष्कर्म में हम क्यों ला रखे हैं, अब मुझे तमोगुण बना दिया, मेरे बस की बात नहीं, मेरे साथ सो उठा है और मैं पता नहीं कितना नाश कर देता हूं, गुस्सा होता है, और ब्रह्मा के अंदर इतना रजोगुण भर दिया कि सब जीव इसी से प्रभावित है, शिव जी विष्णु जी में स्थितिका कर दिया, तो तुम हमारे ऊपर दयायुक्त है तो ये कुकर्म में क्यों ला दिए, हम मुझे क्यों तमोगुण बनाया, विष्णु ब्रह्मा को क्यों रजोगुण और शिव जी को विष्णु विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया। इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, और इन तीनों की पूजा करने वाला, इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, ये गिरी पुरी वैष्णु नागा ओगड़ ये बांग पीणिये दंडी स्वामी, ये सारे इन्हीं के उपासक है। इसके बारे में ये स्पष्ट करते हैं एक उदाहरण देकर, जैसे तमगुण शिवजी की साधना की थी रावण ने और राक्षस कहाया, पूरे बूंडे कर्म करे, शराब पीने लग गया, मांस खा करता, और फिर पर नारी को अपहरण कर लाया और कुत्ते वाली मौत मरिया, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, उसने शिवजी की उपासना की, ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, उनके द्वार का आ गया। पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कहा कि हे महादेव, आप तो समर्थ हैं, ये क्या मांगता तेरा सेवक प्रदान कर दे। पत्नी की बात को के मुख से अपने आप को समर्थ समझकर महादेव एकदम इंजेक्शन सा लग गया, कहा कि मांग बच्चा क्या मांगता है। तब उसने कहा कि ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो। किसने कहा, भस्मागिरी ने। शिवजी ने कहा चलो मैं भस्म वचनबद्ध होता हूं। उन्हें सोचा क्या मांगेगा, कोई सिद्धि मांग लेगा, जी सिद्धि दे दूंगा। तो उसने कहा, किसने, भस्मागिरी ने कहा कि जब उसने वचनबद्ध हुआ तो वो सीधा खड़ा छोड़ दी साधना, खड़ा हो गया कि मुझे अपना भस्म कंडा दे दे, क्योंकि शिवजी के पास एक ऐसा भस्म कड़ा था, एक कड़ा था जिसमें ऐसी सिद्धि थी कि वो किसी के ऊपर ऐसे कर दे, उसके सिर पर रखकर भस्म कह दे तो फूंक देता था। तो कहने लगा ये भस्म कड़ा मुझे दे दे तेरे वाला। और वो किस उद्देश्य से भस्म कड़ा लेना चाहता था भस्मागिरी, उसका उद्देश्य ये था कि शिवजी पर यो कड़ा लेकर इसकी इसने तो मारूंगा, इसकी पत्नी ना अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब देखो इस शिवजी को हम समर्थ मान रहे हैं तो इसके मन में ये भी नहीं समझ सका कि इसके मन में क्या खोट है, तो 12 वर्ष से तेरे द्वार पर बैठा किस उद्देश्य से क्या कर रहा है। अब शिवजी ने सोचा भी साधु महात्मा है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा, दयालुता दिखाकर वो दे जा, ले भाई ले जा। अब जो ही भस्म कड़ा उसके हाथ में आ गया, भस्मागिरी राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए इन्हीं के पुजारियों में, उसी से मैं कहने लगा बोले बाबा जी होशियारी तू, अब भगवान होले तगड़ा तुझे मारूंगा और इस पार्वती को अपनी बहू बनाऊंगा, पत्नी बनाऊंगा। अब जान गया शिवजी वे तो बड़ा नीचात्मा, अरे यू तो एक बहनों कर दिया तो मेरा काम बन गया, तो अविनाशी की तो ये विष्णु जी, ये भी सोचने की बात है, रोज कथा पढ़े इन्हीं की कहानियां लिखी हुआ। अगर ये अविनाशी होता तो डरता क्यों, आ कह देता जा भाई कर ले के करेगा, यानी अविनाशी नहीं तो भी भय से भागा। पाछे पाछे बस पीछे पीछे बस मागरी आगे आगे ये तमोगुण भगवान शिव जी। अब बुरी तरह पुकार रहा था, जब आपत्तियां हो तो हम किसी और शक्ति को भी याद करते हैं, जब इसने किसी और शक्ति को याद किया तब वो परम शक्ति आकर के उसने उसका बचाव किया, विष्णु में प्रेरणा की, विष्णु ने जाकर के पार्वती रूप धारण किया। और जो पार्वती रूप धारण किया भस्मागिरी डट गया, पार्वती आगी, उसको यही मालूम था कि तेरे पास भस्म कड़ा है तो यो 100 किलोमीटर तक तब शिवजी डटे को न, तो पार्वती के पास खड़ा हो गया। पार्वती बोली क्यों भाग्या जा रहे, आजा मेरे पास बैठ जा, जान दे इसने कि जागा यो, अब ये तेरे पास आएगा नहीं, आजा मेरे से बात कर। वो कहने लगा ठीक सर। पार्वती बोली कि पहले मुझे डांस करके दिखा। अब वो कहने लगा मैंने तो सारी उम्र अपना तप किए हैं, डांस करना मुझे नहीं आता, तब गंडहत नाच करके दिखा मुझे। वो बोला मैं नहीं जानता नाच वगैरह। पार्वती बोली आजा मैं सिखाऊंगी तेरे से। पार्वती के रूप में भगवान विष्णु बोले इस पैर को ऐसे कर, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस जो जिसमें वो कड़ा ले रहा था उसको बोला, ओ कहने लगी और ला और ऊपर कर, ऐसे नहीं और ऊपर ला, जब ऊपर सिर पा लिया जब ने बोली भस्म, पार्वती रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि भस्म, वो भस्मा गिरी जल गया मर गया खत्म हो गया। उस कड़े को लाकर फिर भगवान शिव जी का दिल डटा, अग देख वो मार दिया है और ये तेरा कड़ा पकड़े। अब ये दो तमोगुण उपासक का दो प्रमाण आपको मिल गए। राक्षस स्वभाव में के कसर रह गिरा अपने, जिस जिस भगवान की पूजा करे, जिसको गुरु मान के या भगवान मान के, और उसी की पत्नी पर बदनीत किए बैठा पाप आत्मा, तो राक्षस और साधक ऐसा साधना 12 वर्ष ऊपर ने सिर पैर रख के सिर करे उतरा, या दूं दूं धार है सन्यासी बैरागी शेवड़े दूं दूं धार मचावे हैं, ओह तन पे छार लगावे हैं, बहु भी दूध दूध धार मचावे हैं, ओए होए। तो फिर उससे अब आपको बताते हैं कि एक हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसने ब्रह्मा रजोगुण की साधना की, उससे वचन मांग लिए प्रसन्न करके, सुबह मरू ना श्याम मरू, दिन मरू ना रात मरू, उसने कोरे खोटे कर्म करे, अपने पुत्र प्रहलाद का भी शत्रु बन गया, आखिर में भगवान ने उसका विनाश करना पड़ा। ये वैष्णु साधु जो होते हैं ये विष्णु के उपासक, और गिरिपुरी जो होते हैं ये सन्यासी दंडी औघड़ नागा, ये सारे शिव उपासक हैं। एक समय, पुराने समय की बात है कि कुंभ का मेला भरा, उसमें पर भी होती है कुंभ के मेले में एक समय निर्धारित करते हैं ये अपने मनोमुखी कि इस समय उस तीर्थ में या उस दरिया में स्नान करने से उस स्थान पर मोक्ष हो जाता है। यदि उस तीर्थ में न्यू नानते मोक्ष होगा तो फिर क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने की, भगवान ने गीता और वेद बनाने की, 2 लाइन लिख जाते कि ऐसे ऐसे वहां जाओ वहां नहा लो और मोक्ष प्राप्त कर लो। तो क्या हुआ, वो सभी ये नागा गिरी पुरी वैष्णो ये सभी वहां कहां हरिद्वार के अंदर एक कुंभ का मेला लग गया, पुराने समय की बात है। तो वहां ये जाकर के अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, समुदाय में संप्रदाय में संप्रदाय में। अब जैसे पुरी होंगे वो अपने उनकी न्यारी पहचानो है, वो वहां कनपाड़े न्यारे ओघड़ अलग से नागा न्यारे और विष्णु उपासक न्यारे वैष्णो, तो ये भिन्न भिन्न वहां जाकर के बड़े बड़े मंडल इनके बन जाते हैं अलग अलग, ये रुकते हैं ठहरते हैं, एक दो दिन पहले चले जाते हैं, फिर उस दिन वो चलते हैं अपने अपने पूरी फौज सेना पूरे आगे आगे उनका मुखिया होता, पीछे पीछे वो होते हैं। ऐसे ही उस परभी के दिन जिस दिन परभी लगनी थी यानी वहां नहाने का समय निर्धारित था, उसी समय नागा महात्मा पहुंच गए सबसे पहले स्नान करने के लिए। नागा ये कति नंगे रहते हैं, कोई तन पर वस्त्र नहीं रखते और एकादा कोई लंगोट लंगाट बेसिक बांध ले, तो वो वहां चले गए। सबसे पहले हर की पैड़ी पर वो नहान लग गए, नहाने की तैयारी करने लगे। इतने में वैष्णु साधुओं की सेना आ गई। जब वो वहां पहुंचे उन्हें देखा कि नागा प्रथम स्नान कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ओ उगाड़ो तुम मत ना हो इस पर, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम वैष्णु उपासक हैं विष्णु उपासक हैं, पहले हम स्नान करेंगे तुम बाहर मरो। अब वो नागा बोले कि नहीं, हम नागा बोले कि नहीं, हम सच्चे वैरागी हैं, हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, हम तो नी इच्छा है रैसे है वैसे है। तो वैष्णु साधु कहने लगे रहो शर्ड फड़े तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते है, बार मरो पशुओं की तरह नंगे फिरते हो बेशर्मो। यानी कहने का भाव उनका है पहले स्नान करने के कारण प्रथम हम नावा पो के प्रथम हम स्नान करें, हम उत्तम है हम श्रेष्ठ है। आपस में वो नान स्नान तक गए भूल पर बीवी गई बाड़ में, मुक्का मुक्का वो उसकी जटा पकड़ रहा, वो उसने उल्टा ठा गया ठोक रहा, फिर उनके पास त्रिशूल तलवार और तीर ताई रखेंगे, वो काट लाए अपने हथियार। वो आपस में लड़ पड़े 25,000 वो त्रिगुण उपासक ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक आपस में कटका मर गए। गंगा के पानी को लाल कर दिया, वहां लाश बह बहकर बुरा हाल हो गया, कौवे आ गए वहां पर, अरे तेरा गजब हो। तो ये राक्षस स्वभाव नहीं तो और क्या है, ये किसके पुजारी के कर्म कर बैठे, उसके विषय में बताया है। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तलवार चलावे हैं, वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। इसे नकम्या की कोई उनको गुरु भी बना ले उन भी नरक ले जा, क्योंकि प्रथम तो साधना शास्त्र विरुद्ध। और देखो एक स्नान कर रहा नदी पार इंसान, एक और 5-10 स्नान कर रहे हैं किसी घाट पे, एक दो भक्त और आ जाता है, भाई मैं भी स्नान कर लूं, आ जा तुम भी आप भी आ जाओ, हेलो हम इधर रोले हम इधर रोले आगे पीछे करके, एक जन साधारण से भी गिरे हुए ये इंसान। और इनको कहते हैं जग में साध कुमार है, ये गुरुपद प्राप्त है, इनको साधु कहते हैं संत कहते हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे। और की पैड़ी कहा के भगवान की पैड़ी है, और भगवान की छाती पर कुकर्म कर दिया व कतलेआम कर डाला, तो वो भगवान की पैड़ी की तो ही, भगवान में तुम्हारा प्यार कहां हुआ। हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, ये जग में साध कमावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जावे। इस आदमी के दर्शन भी करने चला था उसको भी नरक पठावे। कैसे, आपने देखा होगा कोई भी गांव ऐसा खाली नहीं है जिसमें ये गिरी पुरी ये नागा या कोई न कोई जो है बुद्धि भ्रष्ट ना रहा हो कभी। अब उनके स्थानों पर वहां क्या करते हैं ये, जैसे कोई देखो दुखी तो आत्मा है और ये भी मानते हैं साधु संतों से सुख मिलता, लेकिन वो संत कौन है, वो तो एक का है परमात्मा, और उसी के दिए प्रमाणों को और हजारों वर्षों तक गुणगान संतों के रूप में गाया जाता है, उस संत से ऐसे हो जाता, संत ऐसा कर देते। उस लालच में उस दुख अपने दुख को निवारण के लिए माँ, अब जैसे किसी गांव में कोई संत रहता जिसको हम साध तो नहीं है पर इनको साध कहते हैं, किसी की भैंस ने दूध ना दिया तो वो अपने बालक ने भेजेगी, बालक डाण जोगा होगा बाबा जी दो रहे, या फिर अपने पति ने कहेगी कि आप जाओ वहां साधु आ रहे हैं उससे कुछ जंतर मंत्र पूछ का हो। तो वो जाता है संत के पास, साधु के पास, इस भांग सुल्फा पीने वाले पाओगे उड़े, क्योंकि वो तो फिर नशे बिना पड़ा रहा आ जाना, भक्ति में इंटरेस्ट वो रस है नहीं जो भैंस के दूध में स्वतन में दूध चूंग रहे बच्चे को, चूस रहे बच्चे को, पी रहे बच्चे को, उंगली मुंह में दे दे, वो कितनी देर चूसेगा, थोड़ी देर तो ऐसे ऐसे करता फिर छोड़ देता कि ना भुका हुआ इसमें वह चीज तक हो नहीं। ऐसे ही कभी सत भक्ति हमने की परमात्मा के चरणों में, उसी की प्रेरणा से घर त्याग देते हैं, वहां वो पशु वो नकली संत उनको भक्ति वो उंगली दे देते हैं मुंह में, वो कितनी देर साधना कर खो चोड़ के फिर भाग लेते हैं, फिर ये घर जान जो गेरे देखो नहीं, फिर ये नशे करके अपना टाइम पास करते, फिर कहते समाधि लागी अपने पढ़ा महर्षि दानंद का चरित्र। क्या कहते थे महर्षि दानंद जी के, मैं वहां पर मैंने दूध रोटी खाने चावल खाया करता, चावल छोड़ दिए, केवल दूध दूध पी के और योग अभ्यास में तत्पर रहता था, पी के भांग पिडारन तक नोके बड़ा अभ्यास कर रहा था यो। अब भांग पी के नो बैठ भी गया साधना में, लगा के कमर किसी द्वार के तो नशे में बैठा है, लोग ने सोचा कमाल है भाई सारे सी नहीं देखा, सारी रात हो गया बैठा है तो, और जे पी के पड़ जा गणी चढ़ जाते नहीं होगा बस समाधि चढ़ रही है बोलियो ना इसने, वह समाधि उतरे डुकी उठ के चल पड़े, फिर थोड़ी देर में फिर गुटी ला पड़े। तो ये ऐसे जन्म बर्बाद करते हैं, तो इन्होंने गांव के गांव उजाड़ दिए, उनको भी नरक ले जावे जो इनके दर्शन के उजाते हैं, तो वो किसी अपनी पति ने भेजेगी बेबे के अपने बेटे ने, तो वो इसे चालबाज होते हैं वो संत साधु नकली, वह कहेंगे ले एक चिलम ला भर के उसमें सुल्फा वो चरस, फिर निकले सलगात दे ओका तकरीबन गांव में पीवे हैं, वो फिर दो नौकर का सलगावा क्यों उसके पसंद नाटक के ऊपर बकरा के शराब दे दे बाबा जी। कहने का भाव ये है कि उस जाने वाले को भी सुल्फा पीण का आदि बना ले, अब सुल्फा मिल रहा है तो उड़े मिल रहा बाबा जी दो, फिर वो घर ते कहते दाने बेच गेहूं ले जाएगा वो बेचेगा, थोड़े दिन में घर की और वस्तु बेच के फिर ले जाएगा पैसे बाबा जी दो सुल्फा लेगा कुछ बाबा जी काट लेगा उतना सा पाचे। तो ऐसे कहते हैं जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा जग में साध कहावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जावे हैं उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाने हम सतगुरु बैठे न्यू जाने। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया को मन भावे हैं। अंधे उनके पुजारी भी अंधे हैं, ऐसे बेवकूफा का पाछा लाग रहे नालाका के। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भावे हैं। पारख लीजे शब्द पति जय सालिक सलाह पुजावे हैं, तुलसी तोड़ मरोड़े मूरख जड़ पे फूल चढ़ावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। काकड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे धावे हैं। कहते जो भगवान ये सन्यासी जो हैं ये तो ये भगवान ने भी भूल गए, भगवान यानी भगवान शिव जी के नाम को से भी परिचित नहीं है, जिस नाम से शिव जी लाभ दे सकता है वो मंत्र भी कोई ना, ये तो बम्ब महादेव बम्ब महादेव बम बम ये न्यू लागे कर। आपने देखा होगा जो कावड़ लेने जाते हैं, कावड़ लेने जाते हैं वो क्या करते हैं, श्रद्धालु, क्योंकि आत्मा परमात्मा की तरफ में युगों से भटक रही है। ये जब तक उसको वो जिसको वो नहीं मिलेगा, जो दूध सतन नहीं मिलेगा मां का, इतने काटड़ू टक्के को नहीं बच्चा, तो ऐसे ये आत्मा उस सुख को छोड़ा ही सतलोक से, और उसकी उसके लिए तरफ रही है, शायद इसमें मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए। तो जैसा भी भ्रमित किया गया है भोले समाज को, वो कहां जाते हैं, हरिद्वार में। वो आते हैं मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल ज्यादा ज्यादा 2 किलो गंगा जल लेकर चलते होंगे या किलो, और वहां से चलते हैं तो भगवान का नाम भी भूल गए। चलो इडले डोती आना आना जाना ये धक्के खा रहे थे, कम से कम नाम भी सही हो उनके पास, आते जाते नाम लेते चले जा तो भी कुछ पुण्य मिल जा। वो क्या करते हैं, बम 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 रग वही कम से कम वो नाम भी सही लो भगवान का तो भी कि मेरा मिला, वो बम बम दे दिया इनके हाथ में खिलौना। तो फिर क्या करते हैं कि जैसे वो वहां से लेकर वहां तक, क्योंकि पुनकर्मी प्राणी परमात्मा की तरफ रहे हैं, कुछ पिछले जन्म के संस्कार थे, इन द्वारा पुण्य है, वही प्रेरणा इनको प्रेरित करती रहती है। अब इनके पल्ला के रहता, जो काउडलिया का पल्ला कुछ नहीं रहता। कैसे, रस्ते में जगह जगह ये सेठ लोग भंडारे खोल देते और वहां ये खाना खाते फ्री। तो इनके पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत कमाई थी उनने भी वो राम लूट ले। और सावन के महीने में तो संतों ने मना किया है कि सैर पर नहीं जाना चाहिए, कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है करोड़ जीव एक दिन में मारे, इतना पाप लगा है हमने, जैसे हम इन चौमासे को छोड़कर विशेषकर सावन को, इसके अतिरिक्त भी अन्य उसमें सीजन में हम पृथ्वी पर एक दिन में जो घूमते फिरते हैं करोड़ों जीवों को की हत्या कर देते हैं, और सामण में तो इतने जीव जंतु हो जाते हैं जिनकी गिनती नहीं, सारे वर्ष में तो इतने पाप हो, हर सामण में घूमने तो एकले इतने पाप हो जाते हैं, इतने प्राणी मरते हैं। और ये सामण में लाए इनके, सामण में जो है ना, सामण में वहां से जल जाओ और यहां से डाओ शिव जी के किसी मंदिर में, अरे भले पुरुषो या गंगा भगवान शिव के लोकता आई है, और वो उस समय खूब नहावे पीवे आराम करे थे, तुम्हारे पाइया गंगा जल के भूखे हैं क्या, वो यहां आकर तुम्हारे जल न पीवेंगे। अब वो क्या करते हैं कि वहां कुछ पुनाई तो पुन कमाई तो उन्हें लूट ली जो इनका भोजन व्यवस्था करते हैं, और वो पाप हो गए नरे व गठड़ी बांधड़ी सामण में पैदल आणते, वो जल लाए थे गंगा कठा के वो डाले मंदिर के उस लिंग पे उस पत्थर पे, और उनका पल्ला तो बम्ब बम्ब रह गया और ना रहा कुछ, और वो पाप बांध ली गठड़ी। तो वही बताना चाहते हैं, काकड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे धावे हैं। अब वो सुल्फा भांग पी का बम बम उन बेरा ने तुम किए बोलो हो के नहीं पड़े रहे, तो उन अनुयायिया ने भी बम बम सीख लिया कि वो बम बम करते अंडे बेचारे उन बढ़ाए बेकूफा के। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाने हम सतगुरु बेटे न्यू जाने हमने, तो भाई भगवान सतगुरु मिल गए इसलिए ये व्यर्थ लग है, न्यू जाने हमने बैदा। ये 10 नाम दया नहीं जाने गेरू कपड़ रंगा हुए हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही ये शिव को करता ठहरा हुए हैं। ये शिव जी ने भगवान मान्य बैठे हैं, पूर्ण परमात्मा का नबेरा भी कोनी। पुण्यात्माओं, आज का जो लेक्चर भाषण जो प्रवचन इतना ही बहुत है, क्योंकि आप देख रहे हो 2.25 घंटे हो गए हैं। तो आपने एक सुअवसर प्राप्त हुआ आपको ये परमात्मा की तत्व ज्ञान सुनने का, और यहां आपको लाते हैं प्रभु, वो उन्हीं की कृपा है। ये काल से आपकी जमानत कराते हैं, हम काल की कैद में हैं यहां पर, हम काल की कैद में हैं और हम ये दास जेल को देख रहा है, जिनकी सजा होगी है उन्हें एक मिनट वहां खाली नहीं रहने देते, कोई न कोई काम लाए रखे, उनको ड्यूटी बांट दी जाती है, तेरा यू काम है, तुम्हें ये काम है, तुम्हें ये काम है, मतलब एक नहीं तो ऐसा नहीं, बाकी उनको ड्यूटी बांट रखी है, उनको कुछ दो चार घंटे काम कराते हैं। तो ऐसे ही हम इस काल की जेल में हमारे जिम्मे ये ड्यूटी ला रखी है, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। और हम इस जेल में कोई व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई नौकरी अलग से कर रहा है, तो वहां से बाहर यहां सत्संग रूपी सपने निज घर में आने के लिए आपको अलग से जमानत करानी पड़ती है। तो यह जमानत भी परमात्मा आपकी लेता है कि इसने 3 दिन छोड़ दे काल भगवान, तेरा वापस आ जाएगा नौ का नौ। 3 दिन 4 दिन की जमानत वो परमात्मा ही कराता है, किसी को 1 दिन की मिल रहा है, किसी की 2 दिन की छुट्टी, किसी की 5 दिन 4 दिन की 3 दिन की। तब आपको यहां ये अमृत ज्ञान सुनने को मिलता है और वही आपको लाता है और वही इस दास को के माध्यम से अपनी प्यारी आत्माओं को अपने उस यथार्थ ज्ञान को सुनाता है। पुण्यात्माओं, ऐसा स्थान इस पृथ्वी पर आपको नहीं मिलेगा। यहां आने के बाद आपको किसी चीज की चिंता नहीं। अब देखो, आपके आने से पहले यहां भगत जो रहते हैं और ये दास सब मिलकर आप पुण्यात्माओं के सुविधा के लिए, बैठन खातिर, ओढ़न के लिए, खाने का, पीने का, वो परमात्मा ही प्रेरणा कर। आप कितनी पुण्यात्मा हो, पहले नौका करते घर में, जो कोई काम ना कर बैठा बैठा खाओ, नौका के बटे हुआ रहा है, कर ले न धंधा। तो यहां आपको बटेव की तरह बिठा के, आप कितनी प्यारी आत्मा उस परमात्मा की। गर्मी हो तो पंखे लावे चला रखे, सर्दी है तो रजाई ओडे बैठे जी सारे रूपर तो अमृत वर्षा भगवान की वाणी का। तो ये सब वो परमात्मा ही करवा रहा है। वो कितना दयालु है, कितना रहम है और कितने प्यारे हो उसको आप। लेकिन हम उसको भूलकर इस काल के अखाड़े में कबड्डी खेल रहे हैं। हम परमात्मा के ज्ञान को कम विश्वास देते हैं और इस नकली लोक वेद को ज्यादा महत्व देते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, अनंत कोट बाजी जहां मैंने रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। अब जैसे परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि मैं इतना समर्थ हूं, मैंने सारे ब्रह्मांड रचे, सकल ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने कांपते रहते हैं, ब्रह्म तक परब्रह्म तक मेरे सामने मेरे से ये घबराते हैं काल भी, लेकिन ये जीव मुझे भगवान नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि इनको काल ने अज्ञान इतना फीड कर दिया कि इस तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाते। क्या कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस योग को समझ ना सकता कोई। मैं तो इनको रो रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो मेरे बच्चे हो, काल पे फंस गए हो, थारी दुरुक्ति कर रखी, कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, मनुष्य है किसी का क्या है कि बीमारी ला रखी, किसी का किसी चीज की कमी है, किसी को कोई नुकसान हो रहा है, तुम 24 घंटे जल रहे हो इस आग में, और इस आग को मैं बुझा सकता हूं, तुम्हें यहां भी सुख दूं और सतलोक ले जाऊं, अपने बच्चों को साफ करके यहां से इसका ऋण उतरवा के और वहां सदा सुखी कर दूं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब आपने सुना कि पर भी लेन गए थे हरिद्वार में, 25,000 कटके मर गए, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। वहां धक्के खान चले जाते हैं, हमारे निर्मल ज्ञान को नहीं सुनते, देखिया कोई चिंता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, सुबह तो लेकर शाम तक ईश्वर की चर्चा, पहले मैं सुनाऊं फिर तुम डिस्कस करो, एक दूसरे तो बतलाओ है, हमारे ये सुख हो गया, हमारे ये सुख हो गया, भगवान ऐसा है। तो पहले इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं वो भाई बहन बैठा कर नयों को बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं, और ऐसे स्थान को छोड़कर हम कहीं जाते तुम्हारे जैसा निर्भाग नहीं। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू गरीब दास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे यो मानुष जीवन एक बार हाथ से छूट गया फिर 84 लाख योनिया में कुत्ते बनकर ऊपर न मुंह कर करवाया करते ये मनुष्य जीवन और ये तत्व अमृत ये अमृत ज्ञान बार बार नहीं मिला करता। समझा है तो सिर दर पाओ बोर नहीं रे ऐसा दाव ये तो कोई मौका लग गया है ये तो दाव लगा जैसे रेल निकलती और भाग का पकड़ने वो सिर पे पांव धर कर भाग गया जब रेल ठाई गाड़ी ठाई तो अब ये सिर पे पांव रख लो आपको ऐसा समझ में आ गई है तो बूंदे इस ऐसे बुरे लोक में फंस कर बैठ गया। अब ये समय निकलने का जैसे कैद में जो कैदी है उनने जरा सा भी रास्ता पा जाना एक नहीं पाओ जेल में क्योंकि उनने बेरा है कि बहुत बूंदी जगह फंस गए और आपको इतना नशा करा दिया इस काल ने या बड़ी जेल बना दी आपका यहां से जानने जीना करता तो अब परमात्मा ने आपको ज्ञान भी दे दिया समझा दिया। एक पुन्नी एक पापी आया एक है सोम दले डरे गरीब दासत पुरुष भजन बिन सभी काल की जेल रे। उस सतपुरुष के भक्ति बिना तुम सब काल की जेल में हो तो इसके लिए परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाओ और बहुत नहीं रे ऐसा दाओ। ये बातें कहन सुन की नहीं ये कर पाड़ने की है हमसे ज्ञान सुन लिया तुमने याद हो गया फिर आगे सुनान लागिर आप असर करते नहीं कहते ये कहन सुन की नहीं है ये कर पाड़ने की है इनको पर अमल करके पीछा छुड़ाना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं दरूं चरण पर शीश गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बंदी जम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आखों रो चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कैडी हो कबीर गुरु जी मिल लेंगे पूछेंगे कुशलात आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नाई तुम्हारे बिसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं शिव बिरंच मुनि नारद इनके हरदन समम। अब गुण किए तो बोध किए करत न मनिहार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाजी। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पे तो कुलाजी। मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरे विकार। तुम दाता दुख बंजना मेरी कर समारी। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूरी करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। बंदे बंदगी बरहक बे। बंदे बंदगी बरहक बे। बेद कते बसी हर नाही देख ले दरहाल बे। बंदे बंदगी बरहक बे। बेदा कते बासी हर क्या अजबे ना नाम अनभक बे।